ओम शांति, ओम शांति। आपने अभी तक पिछले 3-4 दिनों से राजयोग अभ्यास के विभिन्न सत्र सुने हैं और उसमें स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा की सत्य पहचान प्राप्त की और उसका अभ्यास भी किया है। तो स्वयं की सत्य पहचान, मैं कौन हूँ, केवल भौतिक शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सतोगुणी है आत्मा। और इसीलिए जीवन में हम यही चाहते हैं, जो भी हमारे प्रयास होते हैं वो सुख शांति प्रेम आनंद के लिए ही होते हैं। आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, तो हमारा असली घर कहाँ है, परम धाम में। जस्ट एक ग्लिम्स हम एक रिवाइज कर रहे हैं कि क्या हमने सीखा है अभी तक। और परमात्मा का सत्य परिचय, ईश्वर कौन है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका नाम शिव है, जो सभी धर्मों में मान्य है। भले हम उन्हें शिव कहते हैं, और धर्मों में उन्हें खुदा, अल्लाह, गॉड फादर, वाहेगुरु जो भी कहते हैं, लेकिन वो हैं ज्योति स्वरूप, उनके अनेक नाम हैं, हम उन्हें शिव कहते हैं। और परमात्मा भी परम धाम निवासी हैं और वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो जैसे राजयोग में आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान का महत्व है, ऐसे ही समय की पहचान का भी महत्व है। समय, वर्तमान समय, कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसी अनुसार हम सफल होते हैं। तो समय के लिए हम कहते हैं समय की गति बलवान है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, हमें समय के अनुसार चलना होता है, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। और समय पर हम कार्य करते हैं तो ही हम सफल होते हैं, है ना। एक विद्यार्थी है, समय पर पढ़ता है तो परीक्षा में पास होता है, और नहीं पढ़ेगा तो एक वर्ष बर्बाद कर देगा अपना, है ना। ऐसे ही एक बिजनेसमैन है, बिजनेस की सीजन में बिजनेस करता है तो साल भर की कमाई वो कम समय में ही कर लेता है, और नहीं तो पूरे साल मेहनत करेंगे तो भी उतनी प्राप्ति नहीं होगी। एक किसान है, समय पर फसल बोता है तो समय पर फसल काटता भी है, लेकिन अगर फसल काटने के समय फसल बोने जाएगा तो उसको सफलता मिलेगी नहीं। और समय के लिए हम कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यानी कोई भी कार्य को हमें टालना नहीं चाहिए, आज का काम कल पर नहीं, लेकिन कल की बजाय हमें कब कर लेना है, उसे आज ही कर लेना है, क्योंकि समय बीच में पड़ने से कई व्यवधान आ जाते हैं और वो कार्य फिर कभी होता ही नहीं। शुभ कार्यों में तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए ना, अगर कोई शुभ संकल्प आपको आता है तो उसे तो तुरंत कर लेना चाहिए। और समय कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, समय की गति सीधी रेखा की नहीं है, समय की गति चक्रीय है, साइक्लिक है, टाइम इज साइक्लिक, इसलिए हम काल चक्र कहते हैं। तो सीधी रेखा माना एक बिंदु से शुरू हुआ दूसरे बिंदु पर पूरा हुआ, ऐसा समय नहीं चलता है, लेकिन चक्र माना इस बिंदु से शुरू हुआ तो पूरे साइकिल में घूमते हुए फिर से कहां पहुंचेगा, उसी बिंदु पर, यानी पुनरावृत होने की प्रवृत्ति है समय की। तो अगर हम अपनी घड़ी को देखें तो हमारी घड़ी गोल है। अगर अभी 7:15 हैं तो 24 घंटे पहले भी 7:15 थे और अब से 24 घंटे बाद भी 7:15। तो ये दिन और रात का चक्र हर 24 घंटे में पुनरावृत हो रहा है और ये अनवरत चलता रहता है। तो ये समय के चक्र की गति है। और फिर सप्ताह का चक्र है, ऐसे अनेक चक्र हैं। सप्ताह का चक्र है, अगर आज शनिवार है, 7 दिन पहले भी शनिवार था, 7 दिन बाद भी क्या होगा, शनिवार। फिर महीने का चक्र है, अगर आज 11 तारीख है तो 1 महीने पहले भी 11 तारीख थी, नहीं थी, फिर 1 महीने बाद भी 11 तारीख आएगी, तो ये महीने का चक्र है। फिर साल का चक्र है, अभी मई का महीना है तो 12 महीने के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, मई, फिर था और आएगा भी, है ना। ऐसे ही 10 साल का चक्र है, ऐसे ही फिर 100 साल जिसे हम शताब्दी कहते हैं, फिर 1000 साल जिसे हम सहस्त्राब्दी कहते हैं, और ये पूरा ही सृष्टि चक्र क्या है, 5000 वर्ष का चक्र है। तो जब हम कहते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है तो कई बार प्रश्न उठता है, 5000 वर्ष क्यों, तो क्यों है ये समय, दिन और रात, साल का, या जो भी हमने समय बताया, ये क्यों इतना समय है। जैसे दिन और रात 24 घंटे का समय है तो हम प्रश्न नहीं करते कि दिन और रात 24 घंटे के क्यों हैं। हम ये नहीं कहते 30 घंटे का क्यों नहीं, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन थोड़ा लंबा होना चाहिए, कोई कहता है, क्योंकि ये प्रकृति की ओर से निश्चित है। सूर्य अपने, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्र लगाती है, वो पूरा करती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है वो दिन है और जो सूर्य के पीछे है वो रात है, तो हम उस 24 घंटे के अनुसार ही चलते हैं। ऐसे ही एक साल 365 दिन का है तो हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, ये ऑड नंबर 365 क्यों बनाया, 400 सीधा क्यों नहीं बना दिया साल का, तो क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि वो भी प्रकृति की ओर से निश्चित है। क्योंकि सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी चक्र लगाती है और वो पूरे सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में उसे कितना समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है, इसलिए वो साल का समय 365 है। तो ये 5000 साल का जो सृष्टि चक्र है ये भी प्रकृति की ओर से निश्चित है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक कक्षा में नहीं घूमती है, सभी कक्षाओं में, क्योंकि सूर्य गोल है तो उसकी जितनी भी कक्षाएं हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट जो भी हैं, उसमें वो सभी कक्षाओं में घूमते हुए पुनः अपनी मूल कक्षा में आने में उसे 5000 वर्ष का समय लगता है, और इसीलिए सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का चक्र है। अब ऐसे प्रकृति में अनेक चक्र हैं और जो नियम है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे कहते हैं, ऊर्जा का नियम, उसके अनुसार प्रत्येक चक्र में जो ऊर्जा का नियम है, प्रारंभ में वो बहुत शुद्ध है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, लेकिन जैसे समय गुजरता है धीरे धीरे शक्तियां क्षय होने लगती हैं और वो कमजोर पड़ने लगता है, उसमें अशुद्धियां आने लगती हैं और अंत तक आते आते वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। तो अगर उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया, यानी रेज्यूविनेट नहीं किया गया, तो वो चक्र समाप्त हो जाता है। पर अगर वो रेज्यूविनेट हो जाता है तो वो चक्र पुनरावृत होता है। तो अनेक चक्रों में हम देखते हैं, जैसे पानी का चक्र है, हमारे प्रकृति में ये चक्र चलता रहता है, सूर्य से पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, वो बादल पहाड़ों से टकराते हैं, पानी बरसता है, झरनों का रूप लेता है और वो झरने मैदान में नदी का रूप लेते हैं। तो वो जो पानी बरसता है बादल से वो सबसे शुद्ध पानी होता है, लेकिन जब वो नदी के रूप में मैदानों में शहरों गांवों से गुजरती है तो उसमें गंदगी पड़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य उसको यूज करते हैं। तो वो नदी बहते बहते जब अपने अंतिम बिंदु समुद्र तक पहुंचती है तब तक वो मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होता है, सबसे गंदा पानी। अब फिर से सूर्य उस पानी को भाप बनाता है और शुद्ध पानी बादल का रूप लेता है और सारी गंदगी कहाँ रह जाती है, नीचे रह जाती है। और इस तरह से ये पानी का चक्र प्रकृति में चलता रहता है। रात और दिन का जो चक्र है, रात और दिन का चक्र में भी जब दिन प्रारंभ होता है, प्रातः काल का समय शुद्ध समय है, सात्विक समय है, इस समय मनुष्य भक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और कोई बुरा विचार भी मन में आए तो उस समय उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि क्या ऐसे सोचेंगे सुबह सुबह मेरे मन में ये ख्याल क्यों आ रहा है। फिर दिन में हम काम करते हैं तो हमारी शक्ति का प्रयोग करते हैं और शाम तक रात तक आते आते हम थक चुके होते हैं तो विश्राम करते हैं और रात्रि को विश्राम के बाद फिर अपनी ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त करते हैं और अगले दिन के लिए हम तैयार हैं और सूर्योदय के साथ नया दिन शुरू होता है। लेकिन जो रात्रि का समय है वो तमो प्रधान तामसिक समय है, क्योंकि ज्यादातर जो गलत काम होते हैं वो कब होते हैं, रात्रि के समय। कोई जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, कब और भी कोई गलत काम करते हैं तो कौन सा समय है, रात्रि का समय। तो वो तमो प्रधान समय यानी जो अंतिम चक्र का वो समय है वो ऐसा होता है। और ऐसे ही हमारे जीवन का, जीवन में बाल्यकाल जब बच्चा होता है बहुत पवित्र है, भगवान का रूप मानते हैं, उसको बच्चे को कोई बुराइयों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है बुराइयों का ज्ञान होने लगता है ना, और यूज भी करने लगता है, युवा होते होते तक बुराइयों का यूज करने लगते हैं और शक्तियां क्षय होने लगती हैं। तो प्रौढ़ावस्था आती है, बुराइयों के अच्छी तरह से अनुभवी हो जाते हैं और शक्तियां क्षय होती हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन इस चक्र को पुनरावृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वृद्धावस्था से हम बाल्यावस्था में नहीं आ सकते, तो क्या होगा, अंत। तो इस जीवन चक्र का अंत होता है मृत्यु से और आत्मा फिर से नया शरीर लेकर के, पुनर्जन्म लेकर के इस नए चक्र का प्रारंभ करती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र का प्रारंभ भी बहुत शुद्ध है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सतो प्रधान है और उस समय को हम सतयुग कहते हैं। इसको स्वास्तिक से दिखाया है, स्वास्तिक काल चक्र का प्रतीक है, क्योंकि स्वास्तिक की जो भुजाएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी तरह से ये स्वास्तिक की भुजाएं जो हैं वो घूम रही हैं और हर युग में वो आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है हमारे हिंदू धर्म में जिसे शुभ चिन्ह माना गया। कोई भी मंगल कार्य होते हैं तो हम स्वास्तिक का चिन्ह निकालते हैं। तो उसका भाव क्या है कि इस काल चक्र में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें कहीं ना कहीं शुभ है या हमारा भला है या कल्याण है, और ये चार बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये 5000 वर्ष को चार बराबर भागों में बांट रहा है। तो चार युग हैं और हरेक युग बराबर समय का है, यानी सतयुग 1250 वर्ष का, फिर दूसरा युग त्रेता युग वो भी 1250 वर्ष, द्वापर युग वो भी 1250 वर्ष और कलयुग भी 1250 वर्ष, लेकिन कलयुग तक आते आते इसकी शक्तियां इतनी क्षीण हो जाती हैं कि वो पतित तमो प्रधान समय है, जिसे हम विकार प्रधान युग कहते हैं। तो इसके अनुसार हम कौन से युग में हैं? कलयुग में, क्योंकि विकार प्रधान है। आज मनुष्य के जीवन में गुण प्रधान नहीं है, विकार प्रधान है, इसीलिए इस समय को हम कलयुग कहते हैं। और ये समय शुभ, ये काल चक्र शुभ है, इसमें होने वाली हर घटना जैसी भी है, हमेशा ही हमारा कोई अच्छा हो रहा है, जीवन में कुछ बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, फिर हम प्रश्न भी करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, तो फिर क्या उसमें भी हमारा भला है? क्या कहेंगे, उसमें हमारा कल्याण हो सकता है? नहीं लगता है, है ना? लेकिन एक बोध कथा से हमें समझ में आएगा कि कई बार वर्तमान में नहीं, लेकिन वो भविष्य के पर्दे में होता है, तुरंत हमें नहीं पता चलता। तो एक बोध कथा है कि एक बार राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो उसको हमेशा अपने साथ रखता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई, तो उसने अपने मंत्री जी को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। हाँ, सुनी है कहानी? हाँ, तो किस किस ने सुनी है? अच्छा, कुछ ने नहीं सुनी है, इसलिए सुना देते हैं। तो उसकी उंगली कट गई, तो फिर उसने मंत्री को दिखाया, तो मंत्री ज्ञानी था, उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसको गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई, अच्छा कैसे हुआ? तो अभी मंत्री पे गुस्सा आने से उसने आदेश दिया इनको जेल में बंद कर दिया जाए, ना, क्योंकि अब ये मेरा वफादार नहीं रहा। अब थोड़े दिन के बाद राजा शिकार खेलने जाता है, अकेला ही निकल जाता है जंगल में, और शिकार का पीछा करते करते दूर घने जंगल में चला जाता है, और वहां कबीले के लोग रहते थे। तो कबीले वालों का उस दिन अपनी देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाने का दिन था, तो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे, तो राजा पकड़ा जाता है। तो वो जब उसे समझ में आता है मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा गया, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं, मैं राजा हूं, मेरी बलि चढ़ाओगे? तो कहते हैं राजा तो सर्वश्रेष्ठ होता है, आपकी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न हुई, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो ले जाते हैं उसको मंदिर में, तो वहां पुजारी देखता है, बलि का नियम होता है कि उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है। तो जैसे ही पुजारी ने देखा, उसने कहा ये बलि तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज ना हो जाए, इसलिए इसको छोड़ दो, तुम कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। राजा छूट जाता है, और जब वो अपने राज्य की ओर लौट रहा होता है, तो उसे याद आता है मंत्री जी ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो उसने सोचा सचमुच अगर आज उंगली कटी हुई नहीं होती तो बलि चढ़ी जाती, कोई बचाने वाला नहीं था, तो अच्छा ही हुआ। तो वो सीधा गया वहां जेल में और मंत्री को बाहर किया, और फिर क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, सचमुच। हाँ, पूरी घटना सुनाता है कि कैसे अच्छा हुआ उंगली कटी हुई थी। फिर उसने कहा लेकिन एक सवाल है मुझे, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसलिए मैं आपके साथ नहीं था, और अगर मैं आपके साथ होता तो मैं तो पूर्ण मनुष्य था, आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, तो हम दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बुरी थी, लेकिन उसमें भविष्य में दोनों का ही भला था। तो कई बार हमें तुरंत रियलाइज नहीं होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें समझ में आता है कि ये होने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें तब रियलाइज होती हैं जब हमारे सामने कोई ऐसे चैलेंजेस होते हैं या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या हम कहेंगे जीवन में वो हमें अनुभवी बनाते हैं, या हमारी शक्तियों को विकसित कर देते हैं, जो हम नहीं समझ सकते कि हम कर सकते हैं, वो क्षमता हमारी विकसित हो जाती है, तो कुछ ना कुछ भला उसमें हमारा होता ही है जीवन में, जो भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि कहते हैं हर घटना के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें हमारा कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें हमारा भला भी होता ही है, बस हमारी नजर, नजरिया जिसको कहते हैं, हमारा नजरिया होना चाहिए वो देखने का कि उसमें हमारा भला क्या हो रहा है। तो जो पहला युग है वो है सतयुग। सतयुग में आत्माएं परम धाम से पहली बार इस धरती पर आ रही हैं। तो ये आत्माएं कैसी हैं? ये आत्माएं हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ये क्वालिटी किसकी होती है? देवी देवताओं की। इसलिए सतयुग में साधारण मनुष्य नहीं है, सतयुग में देवी देवताएं हैं। और उनका प्रारंभ होता है श्री कृष्ण के जन्म से। माना श्री कृष्ण के साथ और भी देवी देवताएं जन्म लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मुख्य हैं। और वो जब बड़े होते हैं तो वो श्री नारायण कहलाते हैं, जिन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं, क्योंकि वो सतयुग में हुए। इसीलिए हम सत्य नारायण की कथा करते हैं, कभी भी और किसी देवता के नाम के आगे हम सत्य शब्द नहीं लगाते ना? तो सतयुग में सत्य नारायण, उन्हें हम सूर्य नारायण भी कहते हैं, क्योंकि वो सूर्य वंशी हुए और वो डबल ताजधारी हैं, यानी राजाई का भी ताज है और पवित्रता का भी ताज है, यानी वो धर्म श्रेष्ठ भी हैं, कर्म श्रेष्ठ भी हैं। जो स्वास्तिक की भुजा है वो राइट एंड अप है, तो राइट शुभ माना जाता है, यानी संसार का शुभ समय है, और अप माना हाथ को इस पोजीशन में हम कब ले जाते हैं राइट हैंड को? जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो इसका मतलब ये परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं, इसीलिए वो संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, और 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण, ये संपूर्णता का प्रतीक है। माना 16 कोई अंक की बात नहीं, जैसे कोई बात पूरी सच है तो हम क्या कहते हैं? 16 आने सच है। अगर चंद्रमा पूर्णिमा का चांद है तो 16 कला से चंद्र खिला है, तो उसकी पूर्णता है वो। ऐसे ही पुराने जमाने में 1 रुपए में 16 आने होते थे ना, पूरा श्रृंगार किया है तो उसको कहते हैं 16 श्रृंगार। तो ये 16 शब्द जो है वो पूर्णता का, यानी वो संपूर्ण है और संपूर्ण निर्विकारी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष का अंश वंश भी नहीं है, तो फिर जीवन में कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं है? तो इसीलिए वहां कोई चोर या डकैत या हम जो भी कहें ना, ऐसे कर्म करने वाले नहीं है, तो पुलिस भी नहीं है, जेल नहीं है, कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, वकील नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। जब मनुष्य ऐसे कर्म ही नहीं कर रहे तो ये सब शब्द ही वहां नहीं होते हैं। तो संपूर्ण निर्विकारी हैं देवी देवताएं, यानी पावन हैं, पवित्र हैं, और सर्व प्राप्ति संपन्न, यानी उनको सर्व भाग्य प्राप्त हैं। और जीवन में 4 प्रकार के भाग्य माने जाते हैं, तन मन धन और संबंध। तो तन का भाग्य क्या है? तन का सुख है, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ तन हो। तो देवताएं कभी बीमार नहीं होते, लंबी आयु जीते हैं, 150 वर्ष की उनकी आयु होती है, और इसीलिए 1250 साल में कम जन्म होते हैं, सिर्फ 8 ही जन्म होते हैं। और स्वस्थ होने के साथ साथ सुंदर भी है, काया कल्प तरु जिसको कहते हैं ना। आजकल की ब्यूटी जो है वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है, आजकल तो सुंदर दिखने के लिए लोग कितनी कोशिश करते हैं ना, लेकिन उनकी ब्यूटी जो है वो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि उनके अंदर वो डिविनिटी है। और इसीलिए हम आज भी देवी देवताओं के जो मंदिर हमारे पूर्वज हुए हैं, इसलिए उनके मंदिर बना करके हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो वो मन से भी बहुत शांत हैं, सुखी हैं और प्रसन्न हैं। तो हम क्यों दर्शन करने जाते हैं उनके मंदिर में, क्यों दर्शन करने जाते हैं, क्या मिलता है? क्या मिलता है? शांति मिलती है, सुख मिलता है ना? तो जब जड़ मूर्ति हमें वो अनुभव करा सकती है, तो जब वो चैतन्य में होंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने शांत, सुखी और प्रसन्न होंगे। यानी मन का जो सुख है, आज भी कोई विशेष दिन होता है ना देवी देवताओं का, मानो नवरात्रि चल रहे हैं या शिवरात्रि चल रही है या रामनवमी है, कोई भी, तो कितनी भीड़ होती है मंदिरों में, तो धक्के वाले दर्शन होते हैं, है ना? एक धक्के में अंदर और दूसरे धक्के में बाहर। एक मिनट भी आप मूर्ति के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, धक्के खाकर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देवता हैं, देने वाले हैं, तो हमें पता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए किससे मिलने वाला है, इन देवी देवताओं से मिलने वाला है। कोई भी मंदिर में जाकर वो मांग कर ना आए, ऐसा कभी होता है? हाँ, तो समझ सकते हैं कि वो कितने संपन्न होंगे, तभी तो देने वाले दाता हैं वो, है ना? देवता कहते हैं हम उनको। और फिर धन की संपन्नता भी, अकिचार धन के मालिक हैं, धन मिट्टी के समान है। वहां पर सोने चांदी के महल बनाते हैं, यहाँ पर ईंट पत्थर सीमेंट के मकान बनाते हैं, और वहां सोने चांदी के महल होते हैं, क्योंकि इतना धन है वहां पर, और यथा राजा तथा प्रजा है वहां उस समय के लिए। कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहू कार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो सभी, कोई गरीब होता ही नहीं, ये शब्द ही नहीं होता गरीब ना, तो सभी संपन्न है, धन से भी संपन्न है, और संबंध निस्वार्थ स्नेह देने वाले हैं। निस्वार्थ संबंध, आज के संबंध कैसे हैं? स्वार्थ के संबंध है, स्वार्थ है तो प्यार है, और स्वार्थ खत्म तो प्यार भी खत्म। तो ये सतयुग में संपूर्ण सुखी होती हैं सभी आत्माएं, और प्रकृति का भी पूरा सुख है ना, प्रकृति भी सदा सुखदाई है। आज क्या होता है, गर्मी पड़ रही है तो इतनी गर्मी, मनुष्य दुखी हो जाते हैं। सर्दी पड़ रही है तो इतनी सर्दी कि मनुष्य दुखी हो जाते हैं। बारिश पड़ेगी तो दोनों तरह से, या तो इतनी या फिर बिल्कुल नहीं। तो प्रकृति भी दुख देती है, कहीं भी प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है आज के समय में, लेकिन वहां सदा बहारी मौसम होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, और कभी भी उपद्रव नहीं होते हैं प्रकृति के। तो संपूर्ण सुख शांति समृद्धि का वो समय है, पवित्रता का वो समय है, जहां एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत है, और अखंड भारत है। तो एक धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है वहां पर, और कोई धर्म नहीं। संसार में एक ही धर्म है, भारत ही विश्व है, लेकिन भारत का नक्शा ये नहीं होता। अभी तो भारत बहुत टुकड़े टुकड़े हो चुका है ना, लेकिन वहां पर पूरा विश्व ही भारत है, इसलिए उसको अखंड भारत कहते हैं। तो ये संसार के स्वर्ग का समय है, जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सुना है ना हमारे हिस्ट्री में हमने, कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यानी भारत का नक्शा चिड़िया जैसा था, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए उसको नाम दिया सोने की चिड़िया। फिर 1250 साल के बाद जो समय आया वो है त्रेता युग, जब स्वस्तिक की भुजा राइट बट डाउन है। तो राइट है इसका मतलब अभी भी संसार में शुभ समय है, लेकिन थोड़ी कमी आ गई। डाउन होने का मतलब थोड़ी कमी आ गई, इसलिए इसको हम त्रेता युग कहते हैं। त्रेता शब्द त्रुटि से आया है, त्रुटि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कि कमी है लेकिन दिखाई नहीं देती है, माना ऐसी गलती जो पता नहीं चल रही है। जैसे चंद्रमा है पूर्णिमा के नेक्स्ट डे, उसकी एक लकीर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कैसा चांद दिखता है, पूर्णिमा जैसा ही दिखता है। तो ऐसे ही आत्मा की दो कलाएं कम हो जाती हैं त्रेता युग में, वो 14 कला रह जाती है, लेकिन अभी भी सभी प्राप्तियां सतयुग जैसी हैं, अभी भी देवी देवताएं हैं, निर्विकारी हैं, सर्व भाग्य उनको प्राप्त हैं, लेकिन यहां पर डिनास्टी बदल जाती है। वहां पर श्री नारायण की डिनास्टी है 8 जन्म तक, यहां पर श्री राम की डिनास्टी है और उन्हें हम कहते हैं श्री रामचंद्र जी। तो चंद्रवंश शुरू हो जाता है त्रेता युग में, चंद्रवंश है, इसीलिए हम उन्हें रामचंद्र जी कहते हैं। और यहां पर एक जन्म की आयु थोड़ी कम होती है, 125 वर्ष होती है, इसीलिए 12 जन्म होते हैं, तो 12 गद्दी श्री राम की चलती है और बाकी तो सब समान है। इसीलिए ये भी संसार के स्वर्ग का समय है। तो 2500 साल तक इस संसार में स्वर्ग का समय होता है, जहां दुख का नाम निशान नहीं, इसे ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं। लेकिन 2500 साल पूरे हो गए तो क्या हुआ, स्वास्तिक की भुजा कहां टर्न हो रही है, लेफ्ट। तो लेफ्ट टर्न होना माना अशुभ समय का प्रारंभ। कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले गए, तो वाम मार्ग में क्यों चले गए, क्योंकि आधी कलाएं कम हो गई, जो 16 कला थी वो आधा समय खत्म हो गया संसार का, तो आधी ही कलाएं रह गई उनके अंदर। 8 कला की कमी आने के कारण सबसे पहले जो विकार प्रवेश होता है वो है देह अभिमान। देह अभिमान माना दैहिक दृष्टि हो जाती है, देवी देवताओं की आत्मिक दृष्टि है, लेकिन यहां भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो एक दूसरे को किस रूप में देखने लगते हैं, देह के रूप में। और जब देह के रूप में देखते हैं तो बहुत सारे भेदभाव हैं दैहिक स्तर पर, तो ये ऊंच है, ये नीचे है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये राजा है, ये रंक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, यानी भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। तो पाप कर्म होते हैं, और जब पाप कर्म होने लगते हैं तो उसका फल सामने आता है दुख के रूप में। अब तक आत्मा ने कभी दुख देखा ही नहीं, तो उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है। मानो हम स्वस्थ हैं तो सामान्य है, लेकिन अगर मेरे को बुखार हुआ है, सिर दर्द हुआ है, उल्टी हो रही है, तो हमको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, अभी हम बीमार हो गए और हमें किसकी जरूरत है, डॉक्टर की। तो हम डॉक्टर से इलाज करा के फिर से स्वस्थ होते हैं। तो यहां भी दुख हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है, मतलब किसकी जरूरत है, कौन दुख दूर करेगा, कौन दुख दूर करेगा, कौन करेगा, नहीं पता कौन दुख दूर करेगा, हाँ? दुख में किसको याद करते हैं। तो फिर यहां द्वापर युग में सबसे पहले भक्ति पूजा पाठ शुरू होता है। देवी देवताएं तो स्वयं ही भगवान भगवती हैं, उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी द्वापर युग में वो देवी देवता नहीं रहे, क्योंकि देवी देवताओं वाले गुण खत्म हो गए, तो अब वो हिंदू कहलाने लगते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं के वंशज हैं, या हम कहेंगे हमारे पूर्वज कौन है, देवी देवताएं हैं और आदि सनातन, इसलिए हम उसको सनातन धर्मी कहते हैं। तो यहां पर पूजा पाठ भक्ति शुरू होती है। सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति, यानी निराकार परमात्मा शिव की पूजा हम सबसे पहले शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद अपने ही पूर्व स्वरूप की, है ना, वही देवी देवताओं की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना शुरू करते हैं, तो मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। अब भगवान को याद करते हैं तो अभी दुनिया में इतना पाप तो नहीं है जो उसको खुद आना पड़े, तो भगवान क्या करते हैं, समय की आवश्यकता के अनुसार धर्म पिताओं को भेजते हैं, क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सभ्यता संस्कृति का विस्तार हो रहा है, तो संसार फैल रहा है, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्मों की स्थापना हो जाती है। तो भारत में तो हिंदू धर्म हो गया, लेकिन अब दूसरा धर्म जो दुनिया में आता है वो है इस्लाम धर्म। इब्राहिम आते हैं और वो देखते हैं कि वहां जो लोग हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें कोई नियम धर्म व्यवस्था है ही नहीं, तो वो उन्हें ये सिखाते हैं और उनके कहते हैं 10 कमांडमेंट्स उन्होंने दिए। और इसीलिए आज भी जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने नियमों के पक्के होते हैं। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध आए 2250 साल पहले और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने क्या देखा, जो वैदिक धर्म है उसमें कर्म कांड बढ़ रहा है, पशु बलि नर बलि देने लगे हैं और जो राजा हैं वो चक्रवर्ती होने के लिए दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते हैं तो अनेक निर्दोष मारे जाते हैं। तो फिर उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, है ना, सारे कर्म कांड खत्म करने की कोशिश की उन्होंने और बौद्ध धर्म फैला पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड में। और आज भी जो पूर्वी विश्व के देश हैं वो किसके अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, चाहे चीन है, जापान है, कोरिया है, हांगकांग है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ताइवान है, ये सब कौन से धर्म को मानते हैं, और भी देश हैं, जो भी इस तरफ ईस्टर्न वर्ल्ड है वो सारा बौद्ध धर्म को मानने वाला है, बर्मा तक जो है। और फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई तो वहां पर क्राइस्ट आए, आज से 2000 साल पहले। उन्होंने देखा कि वहां लोगों में आपस में बहुत वैर भाव है, झूठ है और एक दूसरे के प्रति नफरत है, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ, लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ। ये उन्होंने कहा कि जितना तुम अपने को प्यार करते हो उतना ही अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। तो ये संदेश उन्होंने दिया और आज भी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कृष्ण धर्म को मानने वाला है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिकाज हैं, दोनों अमेरिका, साउथ नॉर्थ अमेरिका और भी कुछ और देश भी जो हैं वो ज्यादातर। तो संसार का सबसे बड़ा धर्म है आज कृष्ण धर्म। और फिर बाद में इस्लाम को रिफॉर्म किया मोहम्मद साहब ने, मिडिल ईस्ट में फिर मोहम्मद साहब आए और ना सिर्फ उन्होंने इस्लाम को रिफॉर्म किया लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार भी किया। तो पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज है, अरब से लेकर के सऊदी अरब और उनके आसपास, तुर्की, बहरीन, कतर, कुवैत और ये यमन, ओमान, मिस्र, ये सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। तो ऐसे संसार अनेक धर्मों में विभाजित हो गया द्वापर युग में। तो अनेक धर्म होने से क्या हुआ, अनेक मत मतांतर हो गए और जहां मतभेद होते हैं वहां लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और संसार में समय के नियम के अनुसार क्या हो रहा है, आत्मा की कलाएं शक्तियां कम होती जा रही हैं तो उसके कारण भी वो विकार प्रधान हो रही है, तो आत्मा वैसे ही कमजोर है। तो द्वापर युग में इतने धर्म स्थापन होने के बाद भी कौन सा युग आ गया, कलयुग। तो चौथे युग में आत्मा ने प्रवेश किया कलयुग में। और द्वापर युग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पुर हो जाते हैं, यानी विभाजन हो जाता है। और विभाजन मुख्य रूप से किसका होता है, धर्म और राज्य का। राज्य राजाओं के हाथ में चला जाता है और धर्म धर्म पिताओं के हाथ में आ जाता है। तो उनको होता है राजाई का ताज और धर्म पिताओं को होता है लाइट का ताज, जिसे हम पवित्रता का ताज कहते हैं। तो इसके कारण राजाओं और धर्म पिताओं में, राजाएं जो हैं वो धर्म पिताओं को बहुत कष्ट देते हैं क्योंकि धर्म पिता ज्यादा लोकप्रिय होते हैं पब्लिक में, जन जन में ज्यादा लोकप्रियता किसकी रही। तो वो ईर्ष्या के कारण उन्होंने धर्म पिताओं को जान से भी मारने की कोशिश की, जैसे ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, सबकी हिस्ट्री हम जानते हैं, महात्मा बुद्ध को भी कोई कम नहीं सताया गया, तो सभी को। बाद में इसके कारण ही फिर ये जो चौथा युग आया, इसमें स्वास्तिक की भुजा क्या है? अपटर्न। अपटर्न है, लेफ्ट माना अशुभ समय तो है ही, लेकिन हाथ को हम ऊपर कब उठाते हैं? कहते हैं ना हाथ उठाया, तो हाथ उठाया माना क्या भाव होता है? मारना। तो कलयुग कौन सा समय है? कलयुग माना कलह क्लेश का युग। कलयुग में कोई घर ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो। संसार ही युद्ध स्थल बन जाता है। है कोई घर? कोई बता सकता है ऐसा कोई घर है जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो? और आत्मा क्या हो जाती है? कलाहीन। जीरो कला या एक या दो कला रह जाती है, तो उसका स्थान कौन ले लेता है? विकार। विकार प्रधान हो जाते हैं और इसके कारण संसार में पाप बढ़ने लगता है। पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब संसार में बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे धर्म ग्लानी के समय की ओर हम बढ़ते हैं। तो कलयुग की कुछ निशानियां बताई, जैसे गीत बना हुआ है, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो पूरे गीत में कलयुग की निशानियां बताई हैं, वो सब हैं, लेकिन अब पूरा गीत तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पहली दो लाइन में भी मीनिंग है कि हंस चुगेगा दाना तिनका, यानी जो हंस प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि हंस को सदाचारी पक्षी माना जाता है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तो जो ऐसे सदाचारी ईमानदार होंगे उनकी संसार में क्या दशा होगी? दाना तिनका चुगेंगे माना वो अभाव में जिएंगे। वैसे हंस मोती चुगता है और कौवा मोती खाएगा माना जो कौवे प्रकृति के होंगे, यानी कौवे को चालाक पक्षी माना जाता है। तो जो बेईमान होंगे, हेरा फेरी करने वाले होंगे, वो कैसा जीवन जिएंगे? मोती खाएगा माना वो संपन्न होंगे, वो समृद्ध होंगे। तो आज हम देखते हैं कैसा समय है, यही समय है। हाँ, किसी को कहो आज सच्चाई ईमानदारी से चलना चाहिए तो क्या कहते हैं? बहन जी कौन से समय की बात कर रहे हो? अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो हम अपने परिवार को भी पाल नहीं सकेंगे। तो जिन मूल्यों से मनुष्यों को महान माना जाता था, कलयुग में उन्हीं मूल्यों से मनुष्य को मूर्ख माना जाता है। त्याग, सेवा भाव या ईमानदारी, सच्चाई, इन मूल्यों की कोई कीमत नहीं रहती है। और फिर जो गुरु नानक देव जी ने कलयुग की निशानियां बताई, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म पिता हुए आज से 500 साल पहले लगभग, गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा ये वो समय होगा जब गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, अन्न पूड़ियों में बिकेगा, दूध बॉटल में बिकेगा, सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, मानवता विहीन विज्ञान, विवेक शून्य आनंद होगा। तो ये सब है, गाय कचरे में, विष्ठा में माना कचरे में मुंह डालती है, पता नहीं क्या क्या खाती है, इसीलिए लोग दूध मत पियो। आजकल लोग क्या प्रचारित करते हैं कि दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध में जो कुछ भी है वो हमारे शरीर के लिए अभी हानिकारक है। फिर अन्न पूड़ियों में बिकेगा, ये उनकी भाषा थी, पूड़ी माना पैकेट, तो आज सभी अन्न पैकेट में है। फिर दूध बॉटल में क्या, पानी भी बॉटल में आ चुका है ना। और सिद्धांत विहीन राजनीति है, देव कहते हैं नेताएं कुछ और करते हैं कुछ और मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान से मानवता नहीं आती है मनुष्य में, और ही वो अहंकार की ओर ले जाता है। विवेक शून्य आनंद, यानी आज मनोरंजन कैसा है, मनुष्य का मनोरंजन का स्तर कैसा है, हम सब जानते हैं ना? तो बिल्कुल विवेक रहित मनोरंजन करते हैं हम आजकल। और अंतिम निशानी उन्होंने कही कि चार कुएं का पानी एक कुएं में समाएगा, एक कुएं का पानी चार में नहीं समाएगा। कहने का भाव क्या था? एक माता पिता चार बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, और वही बच्चे जब योग्य हो जाएंगे तो माँ बाप को नहीं पाल सकेंगे। तो वो समय भी आ गया। आज क्या होता है? अगर चार बच्चे भी हैं तो क्या वो माँ बाप को पाल पाते? 3 महीना तुम रखो, 3 महीना तुम, पूरे साल का रोटेशन बन जाएगा। और नहीं तो माँ को अलग, बाप को अलग, और नहीं तो फिर वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं तो क्यों आवश्यकता पड़ी वृद्धाश्रम की? आज है ना मदर्स डे है, 11 मई। कितनी माएं ऐसी हैं जिनको कहीं कहीं आश्रमों में जाकर रहना पड़ता है, उनके बच्चे उनको पाल नहीं सकते, जिस माँ ने पूरा जीवन लगा दिया। तो ये वो समय है। तो कहते हैं कि मदर टेरेसा इसीलिए बनी। पहले वो साधारण नन थी, मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी। तो एक बार कलकत्ता में वो अपनी साथी नन्स के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो आवाज आई कहीं कराहने की। तो इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोबारा आवाज आई, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर आवाज की दिशा में वो गए कि कहाँ से आ रही है। तो देखा एक कचरे के डब्बे से आ रही है। तो देखा उसमें एक बूढ़ा जो बिल्कुल हड्डी का ढांचा है वो उसमें है। तो उन्होंने पूछा, आप कैसे आ गए इसमें कचरे के डब्बे में? तो उसने कहा, मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है, लेकिन मृत्यु भी इतनी निर्दयी है कि मुझे आती नहीं। तो देखा उसको कोड़ था और उसके हाथ पांव उस कोड़ के कारण गल गए थे और बदबू आ रही थी उसमें से। तो उन्होंने अपनी जो साथी थी उनके साथ मिलकर उसे निकाला कचरे के डब्बे से बाहर, लेकर आए अपने उसमें मिशनरी में, और वहां पर पूरा उनका इलाज, डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाना शुरू किया, सारी मरहम पट्टी की। और वो तो ज्यादा दिन नहीं जिया, लेकिन मरते समय उसने कहा कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि जीवन भर मैंने उपेक्षित जीवन जिया, है ना, नफरत का जीवन जिया, लेकिन आज मरते समय कम से कम प्रेम और करुणा के हाथों में मैं हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरा अगला जन्म कुछ अच्छा ही होगा। तो वो बात वो मदर टेरेसा को इतनी लग गई कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मेरे को अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों की सेवा में ही लगाना है। और उन्होंने कोड़ियों के लिए फिर ट्रस्ट बनाया और पूरा जीवन उन्होंने वही सेवा की, और जिसके लिए फिर उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला, तो सभी जानते हैं। तो आज ये स्थिति है और ये कलयुग का अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। और जब अति होती है तो वो अंत का संकेत होती है, अति अंत को लाती है ना। तो कलयुग में भी धर्म ग्लानी की अति है अभी, जैसे रात की अति दिन आने का संकेत है। रात के 12 बजे हैं तो उसके बाद पता है कि क्या होने वाला है, अगले दिन की शुरुआत। लेकिन वो दिन होने के लिए क्या चाहिए? दिन होने के लिए क्या चाहिए? सूर्योदय। बिना सूर्योदय के अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। तो इस कलयुगी दुनिया के अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए भी परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य का उदय इस सृष्टि पर होता है, जो गीता में भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं। तो वो गर्भ से तो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो निराकार हैं। तो परमात्मा इसी दुनिया के एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं, उनका दिव्य प्रवेश होता है, जिसको वो प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है। तो परमात्मा उनके द्वारा उस स्थापना का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो वर्तमान समय परमात्म अवतरण का समय है। तो आपने सुना तो होगा ही कि परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना परमात्मा शिव के द्वारा ही हुई सन 1936 में। तो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी और ये ज्ञान यज्ञ स्थापन किया। जैसे दुनिया में यज्ञ रचते हैं तो वो तो अग्नि कुंड का यज्ञ होता है और उसमें स्थूल आहुति देते हैं, तिल जौ घी और भी वस्तुओं की आहुति देते हैं, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में हम विकारों की आहुति देते हैं, और जब हम विकारों की आहुति देते हैं तो मनुष्य देवता बन जाते हैं, जिसके लिए कहा नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं, यानी फिर से धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये वर्तमान समय संगम युग का समय है। संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ये पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग है। पुनः आत्मा सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनती है। हालांकि आत्मा को कलाहीन बनने में 5000 साल लगते हैं, है ना, विकारी और कलाहीन बनने में कितना समय लगा, 5000 वर्ष, लेकिन उसको पुनः सर्वगुण संपन्न और पवित्र बनने में सिर्फ कुछ वर्षों का समय लगता है, क्योंकि परमात्मा से योग लगाने से लिफ्ट मिलती है। जैसे लिफ्ट में हमें मेहनत नहीं लगती, हम सहज ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये चढ़ती कला का समय है, जिसको कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो हमारा ही भला नहीं होता, पूरे संसार का भला हो जाता है, ये वो समय है। तो ये परमात्मा अवतरण का युग है, और इसको संगम युग इसलिए कहा क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। संगम माने मिलन स्थान, जैसे दो नदियों के मिलन को भी संगम कहते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है, और किसी युग में परमात्मा हमें नहीं मिलते, क्योंकि परमात्मा आते ही नहीं, उनकी आवश्यकता ही कलयुग के अंत में है। बाकी दूसरे युग में धर्म पिता आते हैं, और ऐसे ही ये श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय है। तो अभी जो हम कर्म करते हैं वही हमारी दो युगों की प्रारब्ध होती है, भाग्य होता है। कई बार लोग मजाक में कहते हैं जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो आप सोए हुए थे क्या, तो सचमुच ऐसा है। कैसे है, क्योंकि भगवान भाग्य विधाता है, और वो जब इस धरती पर आते हैं ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटते हैं, तो कौन सी नींद में सोए रह जाते हैं, वो नींद नहीं जो जागने सोने वाली नींद है, लेकिन अज्ञान नींद में सोए रह जाते हैं, और भगवान भाग्य बांटकर चला जाता है। तो ये वो समय है जिसके लिए हम कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये भाग्य अभी मिल गया भगवान से, तो पूरे कल्प का भाग्य, पूरे कल्प की प्राप्ति हमने कर ली, और नहीं तो फिर हम इनसे वंचित रह जाते हैं, और फिर हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। अब कलयुग की समाप्ति कैसे होगी, ना, समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे अभी हमने देखा, मैं चाहूं कि रात ना हो, हो सकता है, मैं चाहूं दिन ना हो, हो सकता है, तो हमारे चाहने से हम समय को नहीं रोक सकते। समय को परिवर्तन होना ही है, कलयुग से सतयुग आना ही है, लेकिन आएगा कैसे, कलयुग समाप्त कैसे होगा, कैसे होगा, तो कलयुग की सृष्टि का विनाश होता है। जैसे कोई भी चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, है ना। आपके कपड़े फट रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, फेंक देंगे और उसकी जगह नए कपड़े लेंगे। एक फसल पककर तैयार हो गई तो क्या करेंगे, काटेंगे उसको, तभी नई फसल होगी, नहीं तो नई फसल नहीं उगा सकते। मकान बहुत जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको गिराएंगे, तब जाकर के फिर उसकी जगह नया मकान बनेगा। तो ऐसे ही सृष्टि, ये सृष्टि का परिवर्तन बिना कलयुग को खत्म किए नहीं हो सकता। तो महाविनाश का समय सामने है हमारे, और सब तैयारियां हैं उसकी। आज हम देखते हैं तीन तरह से तैयारी, एक तो प्रकृति की तैयारी है, दूसरा एटॉमिक वेपन्स की तैयारी है। आज प्राकृतिक या पर्यावरण असंतुलन है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि हम इतने ऑटोमोबाइल्स या जो भी हम उद्योगों में धुआं निकालते हैं उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उससे तापमान बढ़ रहा है तो पोल्स की बर्फ पिघल रही है, इससे सी लेवल बढ़ रहा है और इसके कारण मौसम में अचानक परिवर्तन होते हैं और कहीं तूफान आते हैं, कहीं भूकंप, कोई साल ऐसा नहीं होता जब कोई ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा ना आए, है ना। ये तो आते और ये और बढ़ते जाना है, आने वाले समय में जितना इम्बैलेंस होता जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। और एक प्राकृतिक आपदा, कितने हजारों भूकंप बड़ा आ गया तो लाखों को एक साथ ले जाती है, तो ये प्रकृति का संतुलन हम देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमने इसके लिए कोई उपाय नहीं किया तो ज्यादा समय ये धरती चलने वाली नहीं है। एक समय आएगा कि ऑक्सीजन के लिए भी वो लेकर के घूमना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी। और एटॉमिक वेपन्स तो हम कहेंगे इतने हैं दुनिया में आज, वो ऐसी एक दुनिया तो क्या कई दुनिया खत्म कर सकते हैं। कोल्ड वॉर तो देशों में चलता ही रहता है, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, लेकिन वो कब हॉट वॉर में बदल जाए, है ना। तो देखते हैं ना, कभी भी किसी का दिमाग खराब हो सकता है। हाँ, जैसे थोड़ा सा ही ट्रिगर कर दो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में अभी थोड़ा ट्रिगर हुआ तो कहां तक पहुंच गए, हाँ परमाणु युद्ध की धमकी देने तक तो पहुंच ही चुके थे, है ना। तो बीच में इंटरफियर किया गया, तो फिर अब जो है थोड़ा युद्ध विराम, वो कब तक चलता है। तो ऐसी वॉर माना जो इंटरनल है वो तो चलती ही रहती है, कितने देशों के बीच में। अभी तो वैसे भी दो युद्ध ऑलरेडी चल ही रहे हैं दुनिया में, तो कब थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए। और आज के युद्ध क्या है, आसमान के युद्ध है। अभी मैदानों में लड़ने वाली बात नहीं है कि भाई एक गोली से एक ही मरने वाला है, अभी तो कंट्रोल रूम में बैठ करके बटन दबाया और जहां टारगेट करते मिसाइल कहां पड़ती है, वहीं जाकर के वो पड़ती है। तो हम इस युद्ध की तैयारी भी देख रहे हैं कि ये भी कोई दूर नहीं है। फिर तीसरा है धर्म के नाम पर युद्ध। धर्म के नाम पर कई देशों में मार काट आज भी चलती रहती है, जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं। तो फिर कई भाई बहने कहते हैं अच्छा बहन जी, विनाश होना है तो क्या भगवान ने कोई डेट बताई है। तो भगवान हमें डेट नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो हमें डेट कॉन्शियस या डेथ कॉन्शियस नहीं बनाना चाहते, है ना। कोई भी डॉक्टर मरीज को नहीं कहता है तुम कब मर जाओगे, कहेगा कभी, भले उसको पता है कि ये ज्यादा नहीं जीने वाला, लेकिन वो क्या कहेगा, ठीक हो जाओगे। उसको पता है अगर बता दिया तो वो उतना भी नहीं जीने वाला, लेकिन वो हमें सावधानी जरूर देते हैं, जैसे कि मौसम विभाग तूफान की सावधानी देता है, तूफान आने वाला। अब मौसम विभाग तूफान को रोक तो नहीं सकता, लेकिन जो उससे हमें हानि होने वाली है उसे जरूर बचा सकता है। तो पहले से सूचना जारी हो जाती है कि जो जो इस इलाके में रहते हैं चले जाओ, यहां से हट जाओ, क्योंकि यहां पर तूफान आने वाला है और जान माल की जो क्षति है वो बचे। भगवान भी हमें सावधान करते हैं, क्योंकि आने वाले समय को वो भी नहीं रोक सकते, तो हमें समय से पहले हम तैयार हो जाएं, समय से पहले हम अपना स्व परिवर्तन कर लें और उनसे हम अपना सारा प्रारब्ध, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो देने वाला दाता है, जैसे कहा भाग्य विधाता है, तो समय के पूर्व हम तैयार हो जाएं, इसके लिए भगवान हमें ये सारा ज्ञान और योग की शिक्षा वो महाविनाश के पहले ही हमें दे देते हैं। और आत्मा अपने साथ वही संस्कार लेकर के जाती है। आत्मा तो भौतिक तो कुछ भी नहीं ले जाती ना, जो भी सुख समृद्धि है, हमारी साधन सुविधाएं हैं, ये सब हम नहीं ले जाते। क्या ले जाते हैं साथ में, आत्मा क्या ले जाती है साथ में, कर्म और संस्कार। वो कर्म संस्कार के रूप में, तो अभी हम जो संस्कार बना लेते हैं वही संस्कार फिर हमें सतयुगी सृष्टि में लाने के निमित्त बनते हैं। तो अभी हम इस सृष्टि नाटक के अंतिम चरण पर हैं, कलयुग के अंतिम चरण पर हैं, तो कलयुग के बाद सभी आत्माओं को पुनः परम धाम में जाना है। तो मेजॉरिटी 90% जो है वो वापस परम धाम जाएंगे, जो मुक्ति धाम भी है, लेकिन कैसे जाएंगे, पुनः अपने असली स्वरूप में आकर के आत्मा जाएगी। तो उसे अपने पाप कर्मों का सारा हिसाब यहीं खत्म करके जाना है, क्योंकि ये हमारी यात्रा है ना घर की ओर। तो जब हम कोई यात्रा पर जाते हैं तो कोई भी इल्लीगल सामान आप नहीं ले जा सकते। अगर कुछ भी इल्लीगल होगा और पकड़े गए तो उसकी सजा होती है। तो ये भी हमारे पाप कर्म सब इल्लीगल हैं, तो हमको सब यहीं खत्म करके माना, और चाहे सजा भोग के हम उसे खत्म करें, चाहे परमात्मा से योग लगा करके हम अपने विकर्म विनाश करें, पाप कर्म नष्ट करें, लेकिन हमें अपने पाप कर्मों को यहीं खत्म करके फिर अपने असली स्वरूप में, जो आत्मा का शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, उसी स्वरूप में आकर के पुनः अपने घर जाना है। और फिर पाठ अनुसार माना मेरी आत्मा कितनी कला संपन्न बनी वर्तमान में, उसी युग में मेरा जन्म होगा। अगर हम 16 कला संपूर्ण बन गए तो सतयुग के आदि में आएंगे, अगर हम 14 कला बने तो त्रेता युग में आएंगे, अगर हम 8 कला ही हो पाए तो द्वापर युग में आएंगे। उतना समय सृष्टि चक्र में कम हो जाएगा। तो हीरो एक्टर किसे कहेंगे? एक ड्रामा या फिल्म में हीरो एक्टर कौन होता है? जो उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक पार्ट प्ले करता है, बाकी तो सब साइड एक्टर होते हैं, बीच में आएंगे अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करेंगे। और तो हम क्या बनना चाहेंगे इस वर्ल्ड ड्रामा में, क्या बनना चाहेंगे? हीरो एक्टर बनना चाहेंगे या साइड एक्टर बनना चाहेंगे? जो समझते हैं हम हीरो एक्टर बनेंगे वो हाथ उठाइए। अच्छा, काफी है। तो अगर हम हीरो एक्टर बनना चाहेंगे तो फिर क्या करना होगा? अभी से ही हमें ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना, यानी परमात्मा की श्रीमद अनुसार हमारा जीवन हो। तो भले ही समय बीत चुका है, बहुत गई थोड़ी रही ऐसा हम कहेंगे, लेकिन जब जागे तब सवेरा इसे कहते हैं ना। तो अब अगर हमें ये समझ आ गई, ज्ञान मिल गया, हमें तीसरा नेत्र बोलते हैं, ज्ञान के नेत्र को हम क्या कहते हैं? थर्ड आई। तो जब हमारा वो तीसरा नेत्र अब खुल गया है तो हम अभी अपने ऐसे कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। फिर कई सोचते हैं बहन जी इससे तो अच्छा है ना इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ही मिल जाए, तो मोक्ष चाहते हैं। दुनिया में लोग मोक्ष के लिए भी भक्ति करते हैं, तो कौन उम्मीदवार है मोक्ष के? हाँ, हाथ उठा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अच्छा, थोड़े थोड़े वो भी हैं। तो मोक्ष हम क्यों चाहते हैं? दो कारण हैं। एक तो समझते हैं संसार में बहुत दुख है, सदा के लिए इस दुख से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा क्या समझते हैं? 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है और इतने कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, सांप, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बनती है, इससे तो अच्छा है क्या हो जाए। 84 लाख योनियों से छूटकर हम सीधा मुक्ति में चले जाएं। तो शिव बाबा ने दोनों ही बातें क्लियर की हैं हमें कि आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती। ये सृष्टि चक्र में सिर्फ हमारे 84 जन्म होते हैं, सतयुग में 8, त्रेता युग में 12, 20, द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42, सब मिलाकर हुए 83। और एक संगम युग में अंतिम जन्म है 84वां जन्म। तो कहां 84 लख? लख एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना। तो कहा अपने 84 जन्मों को देखो, वो समझने की बजाय क्या समझ लिया? 84 लाख, वो लख लाख हो गया। तो 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती, वो तो अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगती है। आज हम मनुष्य होकर के क्या तन मन धन के दुख अनुभव नहीं कर रहे? और कुछ भी बुरा होता है तो क्या सोचते हैं? पता नहीं ऐसे कौन से मेरे कर्म हैं, तो क्या क्या फील कर रहे हैं? तो कर्मों का फल तो हम मनुष्य योनि में ही भोग रहे हैं ना, तो इसका मतलब मनुष्य मनुष्य ही बनता है। और नियम है जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। हाँ, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही मिलने वाला है, आम से हमें कोई अंगूर नहीं मिल सकता। ऐसे ही मनुष्य आत्मा का बीज है मनुष्य योनि का, तो वो मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगी, वो जाकर के कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा नहीं बनने वाली है ना। लोग सोचते हैं कर्मों का फल निकृष्ट योनि में जाकर भोगते हैं, नहीं, मनुष्य योनि में ही हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो फिर स्पष्ट हो गया कि 84 लाख तो है ही नहीं, फिर दुख नहीं है सदा संसार में, क्योंकि सतयुग त्रेता तो स्वर्ग है, इतना सुख है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना सुख में आत्मा है वहां। और द्वापर युग में भी इतना दुख नहीं है क्योंकि मनुष्य इतने विकारी नहीं है। ये तो कलयुग के अंतिम समय में आकर के मनुष्य आत्माएं ज्यादा दुखी होती हैं। तो संसार में 3/4 तो सुख का समय ही होता है। तो इसीलिए इस पूरे चक्र से कोई भी आत्मा को पूरा मोक्ष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्मा में एक्टिंग करने का, या हम कहेंगे कि आत्मा क्योंकि एक्टर है इस वर्ल्ड ड्रामा की, तो वो खुद आना चाहती है। मानो कोई भी किसी के अंदर योग्यता है, तो वो क्या चाहता है, मेरी इस योग्यता को मैं यूज करूं, है ना। कोई अभिनय कर सकता है, या कोई गीत गा सकता है, कोई पेंट कर सकता है, हाँ, या कोई डॉक्टर है, तो क्या क्या चाहते हैं कि हमें वो काम मिले जो हमें आता है। और अगर उसे विश्राम दे दिया जाए तो कितना समय करेंगे विश्राम। मानो किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ता खटिया से उतरना नहीं, पूरा रेस्ट देना है, क्योंकि हड्डी नहीं तो जुड़ेगी नहीं। तो आप आ गए बिस्तर पर और 1 हफ्ता बहुत अच्छा लगता है, देखो सब कुछ हाथ में दे रहे हैं, सेवा हो रही है, पूछताछ हो रही है। और 10 दिन के बाद क्या लगने लगता है, कब ये प्लास्टर खुलेगा, कब हम अपना काम करेंगे। हाँ, तो कितना पसंद आया आराम करना, थोड़ा समय, रात भर सो लिए आप, फिर दिन में भी आपको कह दें सो जाओ, सोएंगे। तो आत्मा परम धाम में एक समय तक रह सकती है, क्योंकि उसको जो भी अनुभव है वो इस संसार में ही होता है, वहां तो वो सुषुप्त अवस्था है, आत्मा को वहां कोई अनुभव नहीं है। तो खेल तो कहां चल रहा है, इस दुनिया में चल रहा है। तो इसीलिए मैक्सिमम 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म इस साइकिल में जरूर आत्मा का होता है। तो संपूर्ण मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है, चाहे वो धर्म पिता ही क्यों ना हो। भले ही हम कहते हैं कि वो निर्वाण में चले गए, लेकिन पूरा मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। तो इस अनुसार हम सब के लिए वर्तमान समय कौन सा समय है? वर्तमान समय ये कलयुग का अंतिम समय है, संगम युग का। और इस संगम युग पर परमात्मा हमें जो ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इसके द्वारा हम पुनः अपनी उस सतयुगी पावन स्थिति को, सर्वगुण संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये था समय की पहचान, की वर्तमान समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए और उसकी प्राप्ति क्या है। और अगर नहीं तो फिर पूरे कल्प में ये फिर नहीं होने वाला है। ओम शांति।